Swayam.
Swayam.
Personally.
Personally.
Vayam.
Vayam.
Fear itself.
Fear itself.
Translation and support by His Divine Grace, A.C. Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada. Living beings are involved in the complicated meshes of birth and death, can be freed immediately by even consciously chanting the holy name of Krishna, which is feared by fear personified. Vasudev or Lord Krishna, the absolute personality of Godhead, is the supreme controller of everything. There is no one in creation who is not afraid of the rage of the Almighty. Great asuras like Ravana, Hiranyakashipu, Kamsa and others, by very powerful living entities, were all killed by the personality of Godhead. The Almighty Vasudeva has empowered His name with the powers of His personal self. Everything is related to Him and everything has its identity in Him. It is stated herein that the name of Krishna is feared even by fear personified. This indicates that the name of Krishna is not different from Krishna. Therefore, the name of Krishna is as powerful as Lord Krishna Himself. There is no difference at all. Anyone therefore can take advantage of the holy names of Lord Sri Krishna even in the midst of greatest dangers. The transcendental name of Krishna, even though uttered unconsciously or by force of circumstances, can help one obtain freedom from the hurdle of birth and death. Om Agyanati Varandhasya Gyananjana Shalabhaya Chakshurun Militam Yen Tasmai Shri Guruveyam Nama Om Vishnupadaya Krishna Krishnaya Bhutale Srimate Bhaktivedanta Swami Iti Namine Namaste Saraswati Deve Gauravani Pracharine Nirvishesha Shunyavadi Paschatya Deshadharine Jai Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nitananda Sri Vaidya Darshi Vasudeva Gaura Bhakta Vrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Ram, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. तो इस श्लोक में प्रथम स्कंद के श्रीमद् भागवत के वर्णन आ रहा है कि भगवान का नाम कितना शक्तिशाली है. Holy name is so powerful. तो भगवत नाम में निष्ठा और श्रद्धा उत्पन्न करना बहुत आवश्यक है. यह नाम विवश ग्रहण जन सद्यो विमुच्येत. ये वर्णन है कि येन केन प्रकारेण कृष्ण के नाम का उच्चारण करने मात्र से यद विभेति स्वयं भयम् विमुच्येत. नाना प्रकार के भय से व्यक्ति मुक्त हो सकता है. तो कोई व्यक्ति इस तरह का तर्क देगा कि हम तो हरे नाम ले रहे हैं, जो साधक हैं नाम लेते हैं भगवान नाम, 16 माला भी कर रहे हैं, लेकिन भगवान नाम के ऐसे प्रभाव को हम अपने जीवन में क्यों नहीं देख पाते. अगर हरिनाम इतना शक्तिशाली है और हरिनाम के अंदर इतने गुण हैं, तो नाम जप के समय हमारी अनुभूति कुछ विपरीत क्यों होती है? तो इसका कारण है अपराध. इस अजामिल प्रसंग में श्री सुखदेव गोस्वामी जी अजामिल प्रसंग वर्णन करने के पश्चात उसका निष्कर्ष कहते हैं, मृयमानो हरिर्नामं गृहण पुत्रोपचारितं अजामिलोऽप्यगन्धामा किं पुनर्श्रद्धया गृहण. अजामिल का वर्णन करने के पश्चात जब विष्णु दूतों ने यमदूतों से अजामिल को बचाया, तो इस संपूर्ण संवाद के पश्चात का निष्कर्ष ये ले रहे हैं कि देखिए अजामिल की परिस्थिति क्या थी. मृयमानो, अजामिल ने केवल मृत्यु के समय अपने भगवान का नाम लिया उच्च स्तर में. मृयमानो अर्थात इस तरह विवशता से पहले उसने नाम कभी नहीं लिया था. मृत्यु के समय केवल उसने इस विवशता के साथ भगवान का नाम लिया, मरियमानु हरेर नाम। और दूसरे अजामिल ने भगवान का नाम नहीं लिया था, वास्तव में अपने पुत्र का नाम लिया था। घृणन पुत्रों का चरित्र, वो अपने पुत्र को पुकार रहा था। तो कोई व्यक्ति पुत्र को नहीं लेकिन वास्तव में भगवान को पुकारे तो कितना अधिक लाभ होगा। केवल मृत्यु के समय नहीं, दिन प्रतिदिन 16 माला जो जप करे उसका कितना लाभ होगा। अजामिलोपी अगंधाम। और अजामिल के कांड में हम देखते हैं हरिनाम के विषय में अजामिलोपी अगंधाम अर्थात मृत्यु पर्यंत अजामिल पापपूर्ण आचरण में लिप्त था। अजामिल 4 नियम पालन नहीं करता था। टिल डेथ ही वाज सिनफुल। तो यदि मृत्यु से बहुत पहले यदि हम पापपूर्ण आचरण छोड़ दें और 4 नियमों का पालन करें तो कितना अधिक लाभ होगा। किम पुरुष श्रद्धया अग्रणन। और न कि अजामिल ने नाना प्रकार की कथाओं में बैठकर हरिनाम की शक्ति का वर्णन सुना था। अजामिल के मन में हरिनाम के विषय में कोई ज्ञान नहीं था। तो जीवन भर यदि हम कथाओं में बैठकर और श्रीमद् भागवत इत्यादि से नाम की महिमा का वर्णन सुनते रहे तो कितना अधिक लाभ हो। तो अजामिल पापी था, अज्ञानी था, केवल मृत्यु के समय नाम लिया और वो भी पुत्र को बुलाया, तब भी उसको इतना लाभ मिला। तो वास्तव में कोई नियमित रूप से प्रतिदिन 16 माला जप करते हुए 4 नियम पालन करते हुए भगवान को प्रेम से पुकारे और वो भी हरिनाम की महिमा का ज्ञान रखते हुए तो विचार कीजिए कितना लाभ प्राप्त होगा। ऐसा लगता है लेकिन जब जप करने बैठते हैं तो सब उड़ जाता है, तब याद नहीं आता, तब फिर बीट बैक करके चलो। अजामिल महान था, अपन तो ऐसे याद नहीं रहता क्योंकि हमारा जब अपराध पूर्ण है। एक बड़ी अद्भुत बात है अजामिल कांड में कि अजामिल ने सब कुछ किया लेकिन अजामिल का जप या नाम ग्रहण निरपराध था। तो इसको सुनकर लोग चौंक उठेंगे, कहेंगे क्या नॉनसेंस कह रहे हो भाई, पैसा के साथ रहता था, दारू पीता था, ये करता था, वो करता था और उसका जब निरपराध, और मैं यहां दिन-रात इस्कॉन में घिसता रहता हूं, 4 नियम पालन कर रहा हूं और मेरा जब अपराध पूर्ण, ये कहां का नियम है। तो चलो हम भी अजामिल की तरह हो जाए। इसका ये निष्कर्ष नहीं है। अजामिल में और हम में एक बहुत महान अंतर है। अजामिल ने हरिनाम की महिमा कभी नहीं सुनी थी, बच गया था वो। लेकिन हम लोगों के लिए बहुत देर हो गई है, कूट कूट कर क्लास क्लास में हम हरिनाम की महिमा 5-10 साल से सुनते आ रहे हैं। इसलिए तुरंत ज्ञान होने के पश्चात यदि हम अब नाम लेंगे तो अपराध की श्रेणी में आ जाता है। तो इसलिए अब हमारे पास दूसरा कोई चारा नहीं, अब हमको नाम में परफेक्शन लाना ही है। तो लोग कहेंगे अजामिल बच गया, अजामिल लकी था, ऐसा क्यों हुआ, वैसा क्यों हुआ। लेकिन ये बहुत ही एक रेयर केस है अजामिल का, उसको कोई रेगुलर प्रमाण लेकर नहीं चलना चाहिए। वो केवल हरिनाम की महिमा का वर्णन करने के लिए इस तरह का अद्भुत केस दिया गया है, जिससे कि हम प्रेरित हो नियमित रूप से नाम लेने के लिए, और कुछ नहीं। तो इसलिए अजामिल के इस कथा को समझने के पश्चात हम समझ सकते हैं कि नाम की महिमा बहुत श्रेष्ठ है, लेकिन निर अपराध नाम लेंगे तब उसकी शक्ति का आभास होगा। संदर्भ में भक्ति संदर्भ नाम का एक संदर्भ श्री जीव गोस्वामी दिया है, और इस भक्ति संदर्भ में जीव गोस्वामी जी ने नाम अपराध अपन रोज पढ़ते ही हैं, दस अपराध नाम के दस अपराध, और उसको ध्यान पूर्वक समझना भी चाहिए, क्योंकि कई लोग उसको समझते भी नहीं है और कई कई साल तक उसको बोलते रहते हैं। भगवान नाम में अर्थवाद का आरोप, उसका मतलब क्या है पूछो तो वो पता नहीं, अर्थवाद का आरोप अभी भी बहुत लोगों को पूछूंगा तो पता नहीं होगा, अर्थवाद का आरोप होगा कोई तो अर्थ उसका लेकिन ये सब दस नाम बहुत महत्वपूर्ण है उससे बचना। तो आज दस अपराध के विषय में चर्चा नहीं करेंगे, लेकिन जीव गोस्वामी एक स्तर आगे जाते हैं और वर्णन करते हैं कि नाम अपराध से पांच भयंकर परिणाम होते हैं हमारे भक्ति के जीवन में, और ये अपराध पूर्ण जप के पांच परिणाम क्या हैं, इफेक्ट्स ऑफ ऑफेंसेस। देयर आर 10 ऑफेंसेस बट देन व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ दोस ऑफेंसेस, वो बहुत बड़ा, तो उसकी चर्चा आज हम करेंगे। तो सबसे पहला इफेक्ट है, परिणाम है अपराध पूर्ण जप का, कौटिल्य या क्रूकेडनेस या कपट। क्रूकेडनेस इज द फर्स्ट इफेक्ट ऑफ ऑफेंसिव चैंटिंग। तो वर्णन आता है कि यदि भगवान और भगवान के भक्तों के प्रति हम अपराध करते हैं तो इसका अर्थ क्या होता है कि भले व्यक्ति बाहरी रूप से भक्ति का आडंबर रचाए, भले वो बाहरी रूप से शास्त्रों का अध्ययन करता हुआ दिखे, लेकिन यदि उसके हृदय में अपराध का परिणाम है, इफ देयर आर इफेक्ट्स ऑफ ऑफेंसेस इन हिज हार्ट, तो उसके व्यवहार में भले पता नहीं पड़े लेकिन अंदर ही अंदर वह गुरु वैष्णव और भगवान के प्रति डिसरेस्पेक्टफुल या अनादर का भाव पालता, he maintains disrespectful attitude towards गुरु वैष्णव और कृष्ण, ये अपराध का परिणाम है। अर्थात बाहरी रूप से भले पकड़ में भी ना आए लेकिन अंदर ही अंदर उसका वैष्णव के प्रति, गुरु के प्रति और कृष्ण के प्रति कोई विशेष आदर नहीं है, औपचारिकता मात्र के हिसाब से भक्ति कर रहा है और अंदर ही अंदर बहुत अपराध पूर्ण विचार भी उत्पन्न करता है अनादर की भावना से। जब वो नया नया भक्ति में आता है तो ऐसे अनादर की भावना नहीं होती, बड़े वैष्णव और गुरु और बाकी भक्ति के हर प्रोसेस के प्रति उसका आदर होता है, लेकिन जितना साल वो भक्ति में बिताता है और जितना अपराध करता है धीरे धीरे अनादर की भावना बढ़ती चली जाती है, तो उसके व्यवहार से और आंतरिक रूप से सबसे अधिक कभी सामाजिक शिष्टाचार को बनाए रखने के लिए वो व्यक्त भी नहीं करेगा, क्योंकि उसको पता है अनादरपूर्ण कोई बात कह दूं तो भक्तों के समाज में मेरी निंदा होगी, इसलिए लेकिन मनी मन वो विचार करता है ये तो ऐसी है, ये अपराध का परिणाम है, दिस इज द इफेक्ट ऑफ ऑफेंसिव चैंटिंग, बहुत खतरनाक है। और ये जो व्यवहार है उसको कहते हैं क्रूकेडनेस, अर्थात मनी मन उसको कुछ लग नहीं रहा, बाहर बाहर से आए प्रभो प्रणाम दंडवत और मनी मन सोच रहा है मारू डंडा इसको, चांस मिले तो नहीं छोड़ूंगा इसको, कहते क्रूकेडनेस। मन में कुछ बाहर कुछ, और प्रत्येक व्यक्ति समझ सकता है अरे ये इस तरह चल रहा है अंदर, ये क्यों कहां से आ गया, ये तो अपन प्रवचन में सुन, ऐसे भागवत में तो भागवत प्रवचन में या सेमिनार में तो नहीं बताया गया इस तरह का व्यवहार आप लोगों को करना चाहिए। बाहरी रूप से भक्ति का आपको दिखावा करना है ऐसे कुछ और ऐसे तो सुना नहीं, लेकिन अपने आप में भावना कहां से आ रही है, ये पूर्ण जप का परिणाम। तो इसलिए यहां पर वर्णन आ रहा है कि ये कौटिल्य इसके उदाहरण है दुर्योधन। दुर्योधन कृष्ण को अपनी ओर खींचना चाहता था और कृष्ण के लिए बहुत सुंदर उसने व्यवस्था की थी 56 भोग की, और वो भी सोने की थाली में, सोने के कटोरों में। और कृष्ण वहां आए तो बड़े प्रेम से कृष्ण का पैर मसाज करने लगा, आसन देने लगा और निवेदन करने लगा कि भगवान कृपा करके यहां पर भोजन दीजिए। कृष्ण ने कहा हे दुर्योधन, ऐसे देखा जाए तो बहुत आदर दिखा रहा था लेकिन मन में कोई भावना थी, मन में यही भावना थी कि कैसे वह हमारी ओर आ जाए, ये आए ना लेकिन द्वारका की सेना आ जाए, ये भावना अधिक थी। दुर्योधन क्रूकेडनेस के क्लासिक एग्जाम्पल, जीवन भर उन्होंने केवल उनका मिशन एक ही था कैसे पांडवों को नष्ट करना, जैसे कृष्णों को समाप्त करना, और अब कृष्ण के प्रति इतना आदर दिखा रहा। तो कृष्ण का व्यक्ति हे दुर्योधन, दो परिस्थिति ही कोई किसी के घर में भोजन लेता है, एक या तो उसको भूख लगी होती और दो भूख नहीं भी, लेकिन क्योंकि प्रेम का आदान प्रदान रहता है और एक रिलेशन रहता है तो उसको बनाए रखने के लिए वो खा लेता है कि नहीं, प्रेम या तो भूख या तो प्रेम, और तुम्हारे केस में मेरा दोनों नहीं, ना तो अभी मुझे भूख लगी है ना लेश मात्र कोई प्रेम है, ना तुम्हारा मेरे ऊपर तो तुम्हारे ऊपर और भी नहीं, इसलिए मैं यहां पर भोजन नहीं करूंगा, विदुर किया जाऊंगा वहां ज्यादा अच्छा मुझे व्यवहार प्राप्त होगा। तो क्या बात है, क्या बात है, और कृष्ण ने कहा ये कैसा आडंबर रचा रहे हो, तो मुझे भोजन खिला रहे हो और दिन भर विचार करते रहते हो मेरे वैष्णव भक्त पांडव जो मुझे प्राणों से भी अधिक प्रिय है उनको, उनकी कैसे हत्या की जाए, ये क्या बात है, तो कैसे मैं आपके हाथ से भोजन प्राप्त कर सकता हूं, ये संभव नहीं। तो इसको कहते हैं क्रूडनेस, अर्थात इस जगत में इस तरह का व्यवहार देखा जाता है। जैसे अपने सार्वभौम प्रभु बताते हैं कि एक साधु सैफरन में ट्रेन से जा रहे थे मथुरा से अयोध्या, उस समय की बात है जब राम जन्मभूमि का इशू चल रहा था, तो टिकट कलेक्टर ने पकड़ा, बोले टिकट दिखा, बोले हम तो साधु हैं और राम जन्मभूमि जा रहे हैं, टिकट की क्या आवश्यकता, हम राम जन्मभूमि जा रहे हैं। तो कलेक्टर का अच्छा ठीक है तुझे कृष्ण जन्मभूमि लेकर चलता हूं क्या है अर्थात यदि कोई विचार करे कि केवल ये कपड़ा पहन लिया तो कुछ भी कर सकते हैं, तो ये कपट की भावना है। तो वचन व्यवहार वस्त्र इसमें सब तालमेल होना चाहिए, अन्यथा उसको कपट कहते हैं, क्रूकेडनेस। जैसे एक व्यक्ति ने विचार किया, न्यूज़पेपर खरीदने गया और उसके पास फेक नोट था, पाकिस्तानी निकलता ना जो, तो उसने पहला न्यूज़पेपर वाले को दे देता है करके, ऐसे दे दिया न्यूज़पेपर उठा के लेके गया, जाली नोट दिया, न्यूज़पेपर ले पढ़ने लगा, मालूम पड़ा ये बहुत पुराना लग रहा, क्या बात है, देखा 3 दिन पुराना न्यूज़पेपर, हिसाब बराबर हो गया, उसने जाली दिया उसने भी जाली दिया। तो माया देवी के साथ इस तरह होता है, यदि हम भक्ति में करने जाएंगे तो भगवान भी छल करके हमें इस तरह से कुछ देंगे जो जाली होगा। यदि भगवान की सेवा में हमने जाली नोट आगे किया तो भगवान के पास भी बहुत जाली पड़ा है, ये ले ले। और भगवान का माया जाल इतना विशाल है कि हम उसमें फंस जाएंगे। तो इसलिए समझना चाहिए कि भगवान का इंटेलिजेंस एजेंसी बहुत खतरनाक है। कोई भी व्यक्ति छिप के कुछ नहीं कर सकता, परमात्मा सब कुछ देख रहे हैं और बस भगवान रस्सी दे रहे हैं सबको, पर्याप्त मात्रा में रस्सी देंगे, लो और रस्सी चाहिए और लो और लो और लो। फिर एक दिन बुद्धि भ्रष्ट करेंगे, वो व्यक्ति रस्सी लेकर गले में बांधेगा और खुद ही आत्महत्या कर लेगा। कृष्णा गिव्स एवरीवन सफिशिएंट रोप टू हैंग हिमसेल्फ। कृष्णा गिव्स एवरीवन वेरी गुड क्वालिटी स्पेड टू डिग अ होल टू बरी हिमसेल्फ। अर्थात यदि हम भक्ति में सावधान नहीं रहे तो इस तरह इस जीवन से च्युत होने के लिए बहुत सी संभावनाएं हैं। एक व्यक्ति ने विचार किया कि पापपूर्ण जीवन तो जिया है, अब यमराज आने वाले हैं तो क्या करूं। तो उसने अपने पूरे शरीर पर विष्टा लगा ली, स्टूल। उसको लगा कि यमराज इस दुर्गंध से दूर चले जाएंगे तो यमदूत आएंगे नहीं। लेकिन यमदूत आए सुअर को लेके, तो सुअर आके पूरा चाट लिया। साफ होने के बाद यमदूत पकड़ के ले गए। प्रकृति के नियम में हर प्रकार की व्यवस्था है, कोई बच नहीं सकता, चाहे कितना भी कपट करने का प्रयास करो। ये भौतिक जगत में कोई नहीं बच सकता। इसलिए प्रभुपाद ने कहा भक्ति में आगे बढ़ना हो तो देयर इज ओनली वन रिक्वायरमेंट, सिंसियरिटी। सिंसियरिटी अर्थात निश्चल भाव, निर्मल भाव, कि हम किस तरह से वास्तविक इच्छा का प्रयोग भगवान की सेवा में लगाए। तो इसको कहते हैं, जैसे भक्तिदान ठाकुर बताते हैं कि एक गांव में एक पंडित जी थे, आता जाता कुछ नहीं था लेकिन अपने आप को ब्राह्मण बताते थे और सबके सामने बहुत बड़ी बड़ी बात करते थे। तो उन्होंने कहा अच्छा ठीक है, सब लोग पूजा भी कर, पंडित जी बुलाते थे, उनको बहुत अच्छा लगता था। तो एक दिन वास्तव में संस्कृत स्कॉलर आ गए, तो सबने कहा अरे पंडित जी हराना है इनको। तो पंडित जी घबरा गए, बाप रे अभी तो मेरा पर्दाफाश हो जाएगा। उन्होंने कोई बात नहीं खड़ा किया सामने। तो संस्कृत स्कॉलर ने सबसे पहला प्रश्न पूछा, तस्त्व कौन हो तुम संस्कृत? और हमारे पंडित जी को कुछ पता नहीं थे क्या बोल रहा है। तो उसने उत्तर दिया कस्त्वम खस्त्वम झस्त्वम छस्त्वम टस्त्वम ठस्त्वम लस्त्वम मस्त्वम। और जैसे ही संस्कृत स्कॉलर ने सुना समझ गया ये तो पागल है, उसको कुछ पता ही नहीं, अब मैं इसके साथ क्या मैं संस्कृत का डिबेट करूंगा। बिल्कुल फ्रस्ट्रेट होकर उठ के चला गया। तो जैसे उठ के गया ये पंडित जी के सब अनुयायी कहने लगे जीत गया देखो हरा दिया उसको, भाग गया वो संस्कृत स्कॉलर भाग गया। तो भक्तिदान ठाकुर लिखते हैं कि कलयुग में कई लोग ऐसे होते हैं जो कोई जानकारी नहीं कि वास्तविक ज्ञान क्या है। किसी को पूछो कस्त्वम तुम कौन हो, बोलेंगे मैं शरीर हूं, मैं ये हूं, मैं वो हूं। लेकिन वैष्णव को पूछो कस्त्वम तुम कौन हो, बोलेंगे गोपीर भरतुर पद कमलयोर दास दास दासानुदास। ये हमारी असली आइडेंटिटी है। जब तक इसकी जानकारी नहीं होती ना हम मित्रो न च नरपति नापि वैश्यो न शूद्रो ना हम वर्णी न च गृहपति न वनस्थो यतिर्वा किंतु प्रोद्यन निकल परमानंद पूर्णामृताभे गोपी भरतुर पद कमलयोर। तो जब तक इस स्तर तक नहीं पहुंचेंगे प्रत्येक व्यक्ति अपने तथाकथित मिथ्या अहंकार से उत्पन्न अपने आइडेंटिटी के विषय में बहुत सारे अपभ्रांत रखता है और ऐसी भ्रांत धारणाओं को लेकर वह कपट का आश्रय लेता है अपने उस इमेज को बनाए रखने के लिए, अपनी मिथ्या भावना को बनाए रखने के लिए। लेकिन जब व्यक्ति समझ जाता है दास दास दासन दास ये मेरा वास्तविक आइडेंटिटी है, वास्तविक स्वरूप है, तो फिर ऐसा भक्त ऐसा वैष्णव निष्कपट हो जाता है। सिंपल।
इसलिए भक्ति सिद्धांत सरन ठाकुर ने कहा हाउ टू रिकॉग्नाइज अ वैष्णव, वैष्णव मीन्स नो ड्यूप्लिसिटी ओनली सिंप्लिसिटी, कोई कपट नहीं सरलता। सरलता वैष्णव के आचरण का एक बहुत मुख्य लक्षण है और तब तक हम इसको नहीं प्राप्त कर सकते जब तक अपराधों से मुक्त नहीं होते। तो यहां पर वर्णन आता है कि एक बहुत सुंदर उदाहरण दिया गया है कपट का कि गुरु और वैष्णव की निष्कपट भाव से सेवा करें तो शक्ति प्राप्त होती है और गुरु और वैष्णव की कपट पूर्ण व्यवहार से सेवा करें तो फिर वैसे ही कपट का आदान प्रदान होता है। जैसे कृष्ण और सुदामा ने संदीपनी मुनि की सेवा की और दोनों मिलकर वन के भीतर प्रवेश किए, लकड़ियां लाने गए थे यज्ञ के लिए, अचानक भयंकर वर्षा हो गई। जब वर्षा हुई आंधी तूफान मची, परिस्थितियां खराब हो गई थी और उस समय उस मौसम को सहन करना बहुत कठिन था। तो कभी कभी सेवा में मौसम अनुकूल होता है और कभी कभी बहुत सेवा में आंधी तूफान मचती है। भगवान भी जब अपने गुरु के सेवा में लगे थे तो इस तरह के दोनों प्रकार के मौसम देखने पड़े। लेकिन प्रश्न उठता है कि जब मौसम बिगड़ता है तो आपका मूड बिगड़ता है कि नहीं? तो उस समय कृष्ण और सुदामा जब मौसम बिगड़ गया वो लकड़ी वकड़ी छोड़कर भागे नहीं, ये विचार करके कि पता नहीं कैसी कैसी सेवा में लगा लिया, छोड़ो इनको, वन के इस तरफ से एंट्री किए इस तरफ से निकल जाते हैं क्योंकि वापस आश्रम में जाएंगे तो वापस इस तरह की सेवा और दे देंगे। तो उस समय कपट का वो आश्रय ले सकते थे लेकिन रात भर वो उसी स्थान पर रहकर सहन करने के पश्चात अगले दिन तुरंत वापस वो गुरु के पास आए। क्योंकि जब परिस्थिति बिगड़ती है और इच्छा अनुसार कार्य नहीं होता, फल प्राप्त नहीं होता, तो जो व्यक्ति आदेश देता है उसके ऊपर ही हमारा क्रोध आ जाता है और हमको लगने लगता है कि हमारी समस्याओं का मूल यही है। तो इस तरह लोग कभी कभी भगवान पर क्रोधित हो जाते हैं, गुरु पर क्रोधित हो जाते हैं, वैष्णव पर क्रोधित हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि उनकी योजना के अनुसार कार्य नहीं चलता। गृहीत हस्ता परिबभ्रमातुरा, लेकिन ऐसी विकट परिस्थिति में सुदामा और कृष्ण दोनों ने एक हाथ से एक दूसरे के हाथों को पकड़ा और दूसरे हाथ में वो लकड़ी थी। अर्थात विकट परिस्थिति में मिशन को नहीं त्यागा, उनका मिशन था लकड़ी उठा के लेके आओ। तो भले आंधी तूफान मचे लेकिन मिशन को नहीं त्यागा और न केवल मिशन को नहीं त्यागा लेकिन एक दूसरे का भी सहारा बने रहे। तो भक्ति में भी हमको आगे बढ़ना है तो एक दूसरे का सहायक बनना है और साथ साथ मिशन को भी नहीं त्यागना है। अगर केवल एक दूसरे का सहारा बनते रहे और मिशन को छोड़ दिया, दैट इज सेंटिमेंटलिज्म। और यदि केवल मिशन के ओर ही ध्यान दिया और एक दूसरे का ख्याल नहीं रखा, दैट इज इम्पर्सनलिज्म। तो न हमको इम्पर्सनल बनना है, न सेंटिमेंटल बनना है, न भावुक बनना है, न हमको निर्विशेषवाद बनना है, लेकिन दोनों कार्य साथ साथ चलना है। और कब? जब आंधी तूफान मचे तब भी। क्योंकि जब समस्याओं की बौछार होती है तब व्यक्ति बिल्कुल अपने ऊपर चिंतन करने लगता है और बाकी सब कुछ भूल जाता है। और ऐसी अवस्था में सब कुछ छोड़ना बहुत आसान था उनके लिए। Easiest thing for them to do would have been just leave and go. लेकिन क्योंकि उन्होंने ऐसी सेवा की निष्कपट भाव से सेवा, ये तब परीक्षा ली जाती है जब परिस्थिति विपरीत होती है। तब जब वो लौट के आए तो संदीपनी मुनि ने आशीर्वाद दिया, मैं तुमको आशीर्वाद देता हूं कि जो कुछ तुम्हारे मुख से निकलेगा वो सनातन चिरकाल तक वह स्थायी रहेगा, सत्य बना रहेगा। तो कृष्ण सुदामा को बाद में कहते हैं कि वो तो केवल संदीपनी मुनि गुरु का आशीर्वाद है कि जो कुछ भी मैं कहूंगा वह शास्त्र के रूप में स्वीकार किया जाएगा। ये कृष्ण की नम्रता है। अर्थात उनके आशीर्वाद से महाजनों के आशीर्वाद से फिर कृष्ण का भविष्य कृष्ण बतला रहे हैं किस तरह प्रशस्त हुआ, उज्ज्वल हुआ। इसके ठीक विपरीत दूसरे उदाहरण है कर्ण, और कर्ण के भी गुरु हुए परशुराम, लेकिन छल करके उनसे ज्ञान लिया और उनके साथ छल किया, तो उसका परिणाम क्या हुआ, उन्होंने श्राप दिया, अभिश्राप दिया कि जब आपको यह ज्ञान सबसे अधिक आवश्यक होगा तब इसको भूल जाओगे, और फिर वह उनके विनाश का कारण बना। तो यह कौटिल्य अर्थात जो मन में कपट की भावना होती है, यह अपराध पूर्ण जप का परिणाम है। और इसलिए कई बार भक्ति में हमें ध्यान देना है, जैसे एक व्यक्ति हमारे मंदिर में कृष्णा आर्ट बुक देख रहे थे, कृष्णा आर्ट बुक देखा होगा आपने, बहुत सारे पिक्चर्स है उसमें, तो उसको एक भक्त पूछे कि आपको इतने सारे चित्र में सबसे अच्छा चित्र कौन सा लगा, तो तुरंत बोलता है महाविष्णु का, महाविष्णु देखो कैसे लेटे हुए हैं, आंख बंद करके बस सो ही रहे हैं, मेरे भी जीवन का यही लक्ष्य है, कितना बढ़िया एक चित्र है कि काम भी चल रहा है और सो भी रहे, अगर मेरे जीवन में ऐसे हो जाए तो क्या कहने। अर्थात व्यक्ति के मन में, बद्ध जीव के मन में यह भाव हमेशा रहती है, कम से कम करे और अधिक से अधिक मिले, तो इसको कहते हैं कौटिल्य। ये पहला परिणाम है। दूसरा परिणाम है अश्रद्धा। इसलिए भागवत में वर्णन आता है, तम सुखाराध्यम ऋजुभि अनन्य शरणैर्, तम सुखाराध्यम ऋजुभि, जो सिंपल हार्टेड है, सरल हृदय है, उनके लिए भगवान की आराधना करना सुख या आसान है। सुख आराध्यम, सुख पूर्वक आसानी से वो आराधना कर सकते। लेकिन कृतज्ञ कोनो सेवेत दुराराध्यम असाधु भी, जो असाधु है, जिनके मन में कपट है, उनके लिए भगवान को संतुष्ट करना बहुत कठिन है। तो ये प्रथम परिणाम है कौटिल्य। दूसरा परिणाम है अश्रद्धा, अश्रद्धा या फेथलेसनेस, अर्थात भक्ति के कार्यों में श्रद्धा कम होना। जैसे नाम के विषय में, कथा के विषय में, वैष्णव सेवा के विषय में इतना कुछ श्रवण करने के पश्चात भी हमको लगता है ऐसा थोड़ी होता है, केवल एक बार स्नान करो तो ये हो जाता है, तो ऐसे बस बोलने के लिए, थोड़ा मन बहलाने के लिए। कलयुग में डिप्रेशन ज्यादा है, इसलिए लोगों को थोड़ा ऑप्टिमिस्टिक रखने के लिए, सकारात्मक वृत्ति रखने के लिए, लेकिन इतना कुछ नहीं होगा जितना कहा गया है। तो श्रद्धा का अभाव, अश्रद्धा। तो नाम के विषय में जैसे अभी ये श्लोक आया है, यह नाम विवशक गृणन जन सद्यो विमुच्येत यद्विभेति, ये नाम के विषय में स्तुति है, विवश ग्रहण, विवश विवशता के साथ भी नाम लो तो सब ठीक हो जाएगा। ये नाम की महिमा है, या कथा के विषय में महिमा है। परीक्षित महाराज कहते हैं, तमोपयंतं प्रतियंतु विप्रा गंगा च देवी धृतचित्तमीशे द्विजोपसृष्ट उहकस्तक्षको वा दशत्वलंगायत विष्णु गाथा। परीक्षित महाराज के मन में इतनी श्रद्धा है, वो कह रहे हैं कि अब तक्षक आके मुझे डसने वाला है, आके डस ले, लेकिन आप लोग कथा सुनाते रहो, जय श्री श्री जगन्नाथ बलदेव सिंह राधा गोविंद भगवान। अर्थात महाराज परीक्षित के जीवन में बहुत आपातकालीन परिस्थिति है कि तक्षक आने वाला है, यदि हमको पता पड़े कि कलकत्ता से कोई बहुत बड़ा गुंडा आके हमको गोली मारने वाला है 7 दिन में, तो हमारे अंदर कितनी श्रद्धा है कि हम केवल यहां बैठकर भक्तों को कहें आप कथा सुनाओ, मैं बस कथा सुनता हूं, वो जो भी होगा गुंडा आके गोली चलाने नहीं, तुरंत पहले पुलिस को फोन मारेंगे। तो पता है क्या कर रहे हो तुम लोग, या मुझ जैसे निष्पाप भक्त कोई मारने वाला है, जरा देखो। तो परीक्षित महाराज तक्षक से बचने का कोई दूसरा उपाय नहीं कर रहे थे, ये नहीं कि अपने सेनापतियों को भेज दे जरा तक्षक को संभाल लेना, ये नहीं कि कथा भी सुन रहे और बार बार पूछताछ भी कर रहे तक्षक कहां तक पहुंचा भाई जरा सब पूछना, आ गया क्या निकट आ गया और पास आ गया, तक्षक के विषय में मन में कोई भाव ही नहीं है, पूरी तल्लीनता के साथ कथा सुन रहे हैं। क्योंकि कई बार हम लोग कुछ समस्या से परेशान होते हैं तो कथा में केवल फिजिकली होते हैं, बाकी मन अपना वो समस्या का पूरा एनालिसिस करता रहता है कि अरे ऐसा क्यों हो गया वैसा क्यों हो गया, और कथा में केवल सर हिलता रहता है, अचेत अवस्था में होते हैं। तो जब परीक्षित बैठ के कथा सुन रहे थे सुखदेव महाराज के सामने, तो ऐसा नहीं था कि केवल वो सर हिला रहे थे और मन पूरा तक्षक में लीन था कि कब आएगा कैसे आएगा क्या साइज होगा उसका, वास्तव में विषैला होगा क्या, और पता नहीं श्रृंगी का शराब काम करेगा कि नहीं, क्या भरोसा नहीं भी काम करे, बच्चा था हो सकता है इफेक्ट ना हो, और बाकी यहाँ कथा चल रही है और वो कोई ध्यान नहीं, और ऐसा नहीं कि सुखदेव महाराज को बीच बीच में पूछना पड़ रहा है सुन रहे हो कि नहीं, जगाना पड़ रहा हो प्रश्न करना हो, पूरी तरह चेतना उनकी कथा में थी। ये कैसे संभव था, क्योंकि उनको पूरी श्रद्धा थी, लेकिन हमारे अंदर वो श्रद्धा नहीं है, क्योंकि ये अश्रद्धा नाम के अपराध का एक परिणाम है। प्रभुपाद जी से एक बार किसी व्यक्ति ने प्रश्न किया कि स्वामी जी ये कृष्ण अपने इस द्विभुज रूप में क्यों आए हैं, कृष्ण अपने प्रेममयी शांत वेणुधारी रूप में आते हैं तो उनपे श्रद्धा रखना कितना कठिन है, क्योंकि देखकर पता नहीं लगता कि ये भगवान होंगे, ये तो कितने बड़े प्यारे लगते हैं, ये कैसे भगवान हो सकते हैं, विराट रूप में आते और विराट रूप की पूजा विराट रूप की स्थापना अपने मंदिरों में करते तब लोगों को लगता कि ये कुछ एक्शन पैक्ड है, ये वास्तव में भगवान है कुछ तो कर रहे हैं, बांसुरी बजाना ये तो क्या है, ये तो भगवान को शोभा नहीं देता, भगवान मतलब कुछ तो होना चाहिए। तो प्रभुपाद ने कहा विराट रूप की स्थापना भी हम कर सकते थे लेकिन उसका ड्रेसिंग कौन करेगा, पूरा फैक्ट्री का कपड़ा लाना पड़ेगा और उनको खिलाओगे कैसे, कितने मुख होंगे, और विराट रूप खाते नहीं ये सब, विराट रूप सीधा आदमी को खाते तो क्या भोग क्या लगेगा। तो इसलिए भगवान बड़े कृपालु हैं, वो अपने श्याम सुंदर रूप में आए हैं जिससे हम थोड़ा सा कपड़ा लेकर उनको ड्रेसिंग कर दें, पत्र पुष्प फल उनको दे दें, संतुष्ट हो जाते हैं, लेकिन उसके लिए आपको श्रद्धा चाहिए। तो जिसके मन में श्रद्धा का अभाव होता है वो कल्पना करता कि भगवान अपने विकराल रूप में आए तब वो श्रद्धा। तो एक बार प्रभुपाद जी एक कार में जा रहे थे कि किस तरह विकट परिस्थिति में भी श्रद्धा की परीक्षा होती है, कि बाकी जब सब कुछ ठीक ठाक चल रहा रहता है तो अपने को सब बिल्कुल बढ़िया लगता है, कि हमको अपने को लगने लगता है कि मैं शायद भक्ति में बहुत आगे बढ़ गया हूँ, नाम जब बहुत बढ़िया हो रहा है और यूं यूं अपने को मन में लगता है, लेकिन जब अचानक इमरजेंसी आता है प्रॉब्लम होता है तब समझ में आता है। ऐसा अपन नाम जपते रहते हैं हरे कृष्ण और अचानक सीढ़ी चढ़ते चढ़ते एक सीढ़ी छूट जाती है कई बार और धड़ाम करके तो आ पहले निकलता है, उसके बाद देखते हैं पैर में कुछ लगाते हैं फिर हरे कृष्ण, दो मिनट के बाद फिर कृष्ण का नाम याद आता है, उस समय तुरंत याद नहीं आता। तो प्रभुपाद कार में जा रहे थे और उनके साथ एक बहुत प्रसिद्ध नेचुरोपैथी डॉक्टर, आयुर्वेद और नेचुरोपैथी के डॉक्टर बैठे थे और प्रभुपाद को बड़ा बड़ा लेक्चर दे रहे थे कि आपको अपने शरीर का अच्छी तरह मसाज करना चाहिए क्योंकि आपका शरीर बहुत वीक हो गया है और आपको ये रसायन लगाना चाहिए, इस रसायन से आपकी त्वचा इस तरह से चमकेगी, आपको सर पे ये रसायन लगाना चाहिए इससे आपका माथा बिल्कुल ठंडा रहेगा, फिर पैर में आपको ये रसायन लगाना चाहिए जिससे कि आपके पैर में जो दर्द है वो दूर होगा। प्रभुपाद सुन रहे थे सुन रहे थे। अचानक ड्राइवर पीछे मुड़ के बोला कि स्वामी जी ब्रेक का थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा है, ब्रेक नहीं लग रहा, लगता है ब्रेक फेल हो गया। प्रभुपाद डॉक्टर की ओर बोले अब कौन सा रसायन लगाओगे? तो घबरा गया, तो बोला अरे देखो भाई देखो भाई। और प्रभुपाद बोले हरे कृष्ण जपो, ऐसी परिस्थिति में एक ही रसायन काम आता है। और वो डॉक्टर हरे कृष्ण जपते रहे। और थोड़ी दूर के बाद फिर वो ड्राइवर बोला नहीं नहीं काम कर रहा है, ठीक हो गया। प्रभुपाद को पता नहीं था कि ठीक होने वाला है, लेकिन जब ब्रेक फेल हो गया कहा तो प्रभुपाद ने चिल्लाया नहीं, अरे ब्रेक फेल हो गया बचाओ, अरे मूर्ख नालायक चेकिंग नहीं करता तू गाड़ी का। अपना तुरंत प्रतिक्रिया यही होगी, ब्रेक फेल हो गया बोले तो अपना दिमाग फेल हो जाता है। लेकिन प्रभुपाद ने तुरंत उल्टा मुड़ के चांस लिया उसको प्रीचिंग करने, भैया कौन सा रसायन काम करोगे बताओ, कौन सा रसायन लगाओगे शरीर में, ब्रेक फेल से कौन बचाएगा तुमको, हरे कृष्ण के बोले चलो जपो इसको, कृष्ण रसायन। इसलिए हमारे सॉन्ग बुक का नाम है कृष्ण रसायन। केवल वो रसायन एक काम करता है मृत्यु से बचाने, लेकिन इसके लिए श्रद्धा होनी चाहिए। तो ये अश्रद्धा ये दूसरे नंबर का प्रॉब्लम है जो कि अपराधपूर्ण जप से उत्पन्न होता है। जॉर्ज हैरिसन ने एक बार श्री प्रभुपाद को पूछा कि विप्रलंब भाव क्या होता है, तो प्रभुपाद ने कहा यदि सूर्य हो, अचानक अभी सूर्य चमक रहा है और अचानक कुछ समय के बाद बादल आ जाए, तो जब बादल आ जाते हैं तो सूर्य दिखता नहीं, तो फिर सूर्य से जो भाव उत्पन्न होता है उसको कहते हैं विप्रलंब, कि अब चमक रहा था अब अचानक सूर्य कहां चला गया। और जॉर्ज हैरिसन की शिला प्रभुपाद में बहुत श्रद्धा थी, तुरंत उन्होंने एक सॉन्ग निकाला, एक गीत बनाया, कृष्णा वेर आर यू, इस तरह एक गीत निकाला और वो बहुत हिट हो गया और अमेरिका में स्टेडियम में उसका परफॉर्मेंस चल रहा था। जॉर्ज हैरिसन का वेर आर यू, कृष्णा वेर आर यू गा रहे थे। प्रभुपाद की पूरी पूरी श्रद्धा थी उनकी। और देवाम्रत महाराज उस समय बुक डिस्ट्रीब्यूटर थे, किताब वितरण करने के लिए वो कृष्णा बुक लेके आए थे, और उन्होंने सोचा कि अब जॉर्ज हैरिसन का अगर कॉन्सर्ट है तो लोगों को प्रचार करने का अच्छा मौका है। तो जॉर्ज हैरिसन ने ये नंबर गाया, कृष्णा वेर आर यू वेर आर यू, और जैसे ही खत्म हुआ ये सॉन्ग सब लोग चिल्लाने लगे वेर आर यू वेर आर यू। तो ये जो जेंट्स टॉयलेट था उसके पास ये खड़े रहते थे अपना बुक लेके, और पब्लिक गाते हुए वेर आर यू, तो तुरंत कृष्णा बुक दिखाते हियर इज कृष्णा, तो पब्लिक देखता था तुरंत ले लेता था। और अचानक चारों तरफ से लोग झपट्टा मारे और जो बॉक्स था उनका 2 मिनट में खत्म हो गया। तो बोले देखो केवल एक व्यक्ति यदि प्रभुपाद के ऊपर उनका इतनी श्रद्धा हो और वो प्रभुपाद के आदेशानुसार सेवा करे तो तुरंत उसका परिणाम सब जगह दिखाई पड़ता है, केवल श्रद्धा के परिणाम से। और अश्रद्धा अर्थात जो नाम में श्रद्धा न हो, भगवान पर श्रद्धा न हो, फेथलेसनेस। तीसरा परिणाम क्या है, थर्ड इफेक्ट ऑफ ऑफेंस, भगवान निष्ठा चावक वस्तु अंतरता अभिनिवेश। तो इसको कह सकते हैं वस्तु अभिनिवेश, ये तीसरा परिणाम वस्तु अभिनिवेश अर्थात अब्सॉर्प्शन इन ऑब्जेक्ट्स दैट इरोड वन्स फेथ इन कृष्ण, अब्सॉर्प्शन इन थिंग्स व्हिच टेक योर फेथ अवे फ्रॉम कृष्ण। ऐसे वस्तुओं में मन लगना जिससे आपकी भगवान पर और भक्ति पर से श्रद्धा उठती है। Absorption in objects that erode your faith from the Lord, इस तरह से। तो हमारे हृदय में पहले से ही नाना प्रकार की इच्छाएं हैं, जैसे ठंडी के दिनों में आप कोई लोगों को देखोगे चौकीदार वगैरह या साधु लोग, अपने सामने उनका ऐश रहता है, ऐश को क्या कहते हैं, खाक, तो राख, तो रात को वो लोग थोड़ा ऊपर से ऐसे ऐसे करते हवा देते हैं तो खट से ऊपर निकलता है आग, ऊपर से दिखता नहीं अग्नि लेकिन अंदर होता है। तो वैसे भी हरिनाम लेकर जो हमारी इच्छाएं हैं अभी सुप्तावस्था में चली गई है, पूरी तरह गई नहीं, और जैसे अनुकूल वायु मिलती है फिर से वो बाहर निकल आता है। तो इसलिए हमको बहुत सावधान रहना चाहिए। और जब अपराध पूर्ण को जप करेंगे, कोई अपराध होगा तो उसका परिणाम ये होगा कि वो व्यक्ति भक्ति के 10, 15, 20 साल बिताने के बाद भी ठीक वापस वही इंद्र तृप्ति में लग जाएगा जो भक्ति में आने से पहले वो लगा था। ये बहुत अद्भुत बात है। वो कैसे लिंक पता लग बैठता है ये बड़ी विचित्र बात है। तो भक्ति में आने के पहले हम सभी के कोई ना कोई बुरी आदतें रही होंगी और हम सब भक्ति के मार्ग में नहीं थे। अब भक्ति में आ गए, चार नियम पालन कर रहे हैं, नाम जप रहे, ये कर रहे वो कर रहे, 10 साल निकाला, 15 साल निकाला, फिर अचानक देखते हैं कि वो व्यक्ति वही कार्य कर रहा है जो पहले करता था। क्यों? अपराध का परिणाम। तुरंत समझना चाहिए अपराध का ही कोई परिणाम है। That is an offense, effect of an offense। शास्त्र के उदाहरण है भरत महाराज। भक्ति के उस स्तर पर पहुंचकर सब कुछ त्यागने के बाद अचानक एक मृग से आसक्त हो गए, तो समझना चाहिए कि पूर्व जन्म का कोई अपराध होगा, उसका वो परिणाम इस तरह निकला। अब्सॉर्प्शन, अभिनिवेश मतलब अब्सॉर्प्शन, आसक्ति ऐसे वस्तु से जिसका भक्ति से कोई संबंध नहीं। उसी तरह हम भी भक्ति में आने के पश्चात भक्ति से न संबंधित वस्तुओं से आसक्त हो सकते हैं। देखा जाता है कि भक्ति में भी आकर भक्त लोग शास्त्र, कीर्तन, प्रचार इत्यादि को छोड़कर बाकी अन्य वस्तुओं से आसक्त होते हुए दिख सकते हैं। न्यूज़पेपर से, मैगजीन से, पिक्चर से, टीवी से, इससे उससे, और वो लोग कहते हैं कि पता नहीं मेरा ये आदत छूट नहीं रहा। ये अपराध का परिणाम है। वो आसक्ति है लेकिन ये किसके कारण है? अपराध के कारण। तो प्रभुपाद जी उदाहरण देते हैं कि कोई व्यक्ति आपके सामने प्रसादम रखे, आप भूखे हो, प्रसाद का प्लेट रखे, बहुत सुंदर सुंदर व्यंजन रख दिए उसमें, 56 भोग, आप बिल्कुल भूखे हो और अभी खाने ही वाले हो और बस एक दाना आपने, बस प्रसादम प्रेयर बोलने के लिए आंख बंद किया, देखा, अरे वाह बहुत बढ़िया है, आंख बंद किया और जैसे ही आंख बंद किया सामने से कोई प्लेट उठा के गायब कर देता है और फिर आपका आंख खुलता है तो क्या आपकी अनुभूति होगी? अरे अभी इतना कुछ सुख मिलने वाला था, कुछ है ही नहीं। तो प्रभुपाद कहते हैं भौतिक जगत में इंद्र तृप्ति का सुख भी ऐसा ही केवल कल्पना के स्तर पर रहता है और कल्पना के स्तर पर सबसे अधिक रहता है वो, और वास्तविकता में परिणित होता है तो दुख आरंभ हो जाता है। मैक्सिमम प्लेजर यू गेट फ्रॉम सेंस ग्रेटिफिकेशन इज व्हेन इट इज इन कॉन्सेप्ट स्टेज एंड व्हेन सेंस ग्रेटिफिकेशन एक्चुअली टेक्स प्लेस द डिस्ट्रेस बिगिंस, सो इट्स लाइक अ डिक्रीजिंग ग्राफ। तो हम कल्पना करते हैं ऐसा सुख मिलेगा, वैसा सुख मिलेगा, लेकिन वास्तव में कल्पना मात्र रह जाती है। जैसे दीनबंधु प्रभु बताते हैं, हम लोगों का मंदिर था अटलांटा में, तो नरसिंह चतुर्दशी के दिन उन्होंने बहुत बढ़िया चॉकलेट का केक बनाया था, कैरम का चॉकलेट का जैसे दिखता था बड़ा सा, और उसको देख कर सब ब्रह्मचारी के बिल्कुल जो है आनंद की अनुभूति हो रही थी, सबको विप्रलंब महसूस हो रहा था, सेपरेशन, और फेस्टिवल चल रहा था और आरती हो रही थी और सब लोग बोल रहे थे कभी आरती समाप्त होगी और कब हम लोग इस पर टूट पड़ेंगे, और सब फटाफट फटाफट नरसिंह आरती वगैरह गाया और सभा के बैठ गए और बहुत क्विक फास्ट महाप्रसादे प्रेयर भी गाया और खट खट करके सबके सामने वो एक एक पीस रखने लगे और वो चॉकलेट का केक पहले व्यक्ति ने उठाया और खट करके मुँह में लिया। और हुआ यूँ था कि वो कुक उसके अंदर शक्कर डालना भूल गया था, तो दिखने में बढ़िया लेकिन स्वाद में बिल्कुल बेकार, है ही नहीं कोई स्वाद, लेकिन इतनी देर तक कल्पना की थी, मानने के लिए तैयार नहीं था कि इसका टेस्ट ऐसा हो सकता है, तो उसने सोचा शायद गलत साइड से काटा होगा, उसको घुमाया बोला दूसरी तरफ से ट्राई करता, वही स्वाद ऐसा तो नहीं हो सकता। तब देखा दूसरों का क्या हाल है, दूसरे भी एक दूसरे को देख रहे थे सबका क्या हाल। तो इंद्र तृप्ति ऐसा है, दिखने में बहुत आकर्षक, उसको चबाओ, ये था क्या, वो तो एडवर्टाइजमेंट में बोले थे ऐसा ऐसा है, लेकिन ऐसा है ही नहीं। तो ये इंद्र तृप्ति का अनुभव है। तो इसलिए भक्ति में आने के पश्चात भी, भक्ति करने के पश्चात हमको लगे, लगता है मैंने वो इंद्र तृप्ति बहुत जल्दी छोड़ दी, इतना जल्दी नहीं छोड़ना चाहिए, वापस थोड़ा जाके आता। तो वास्तव में इतना सब करने के बाद भी मन मानता नहीं, और कभी कभी भक्ति करते हुए भी भौतिकवादी लोगों को देखकर मन में इच्छा होती है कि अरे रे रे ये क्या कर दिया मैंने, अगर आज मैं यहां नहीं होता तो वहां होता, हाय। और माला को देख के हम सोचते हाय क्यों आ गया मेरे गले में। लेकिन महान भक्त वैष्णव जैसे प्रभुपाद, जब किसी व्यक्ति को इंद्र तृप्ति करता हुआ देखते हैं तो आंखों से आंसू आते हैं, है कि नहीं। यदि कोई व्यक्ति रास्ते पर बैठा है और अपने हाथ में हथौड़ा लेके अपने पैर को मार रहा है, तो उसको देखकर द्वेष होता है क्या, किसी को द्वेष होगा कि अरे बाबा कितना आनंद लूट रहा है, मुझे भी ऐसा आनंद लूटना चाहिए, द्वेष की भावना आती है।